इब्रानियों अध्याय 9। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान जो इस दुनिया का था, इसमें एक तंबू था। तंबू में पहले दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर से सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल निकल आए थे, और वाचा की पट्टियां थी। संदूक के ऊपर दोनों तेज से भरे हुए करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी तो पहले तंबू में तो पुरोहित कभी भी प्रवेश करके सेवा के काम निभाते रहे, परंतु दूसरे में केवल प्रधान पुरोहित वर्ष भर में एक ही बार जाता था। वहां वे खून लेकर जाता था जिसे वे अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू और यह जो कुछ दर्शाता है खड़ा है, तब तक महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक शुद्ध नहीं हो सकते, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो नई वाचा के आने तक थे। लेकिन मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रधान पुरोहित होकर आए, और उन्होंने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस दुनिया का नहीं, और ना ही जानवरों के खून से, किंतु अपने ही खून के द्वारा एक ही बार हमारे लिए अनंत आजादी प्राप्त करके पवित्र स्थान में प्रवेश किया। क्योंकि जब जानवरों का खून और उनकी राख अशुद्ध लोगों पर छिड़के जाने से बाहरी रूप से शुद्ध किए जाते हैं, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निष्कलंक चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और ज्यादा क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। इसी कारण वह नई वाचा के मध्यस्थ हैं, ताकि उस मौत के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से आजादी पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वायदे के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वसीयतनामा तैयार किया गया, वहां वसीयतनामा बनाने वाले की मौत को समझ लेना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा वसीयतनामा मरने पर ही अमल में आता है, और जब तक वसीयतनामा बनाने वाला जिंदा रहता है तब तक वह काम का नहीं होता। इसलिए पहली वाचा भी बिना खून के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को नियम शास्त्र की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने जानवरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस किताब पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा
कि ये उस वाचा का खून है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है।
और इसी तरह से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर खून छिड़का। नियम शास्त्र के अनुसार प्राय सब वस्तुएं खून के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। बिना खून बहाए गुनाहों की माफी नहीं है, इसलिए जरूरी है कि स्वर्ग की चीजों के प्रतिरूप इन बलिदानों द्वारा शुद्ध किए जाएं। परंतु स्वर्ग में की वस्तुएं इनसे भी उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने मौजूद हों। ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाएं, जैसा कि प्रधान पुरोहित प्रतिवर्ष कुर्बानियों का खून लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। नहीं तो दुनिया की शुरुआत से लेकर यीशु को बार बार दुख उठाना पड़ता, लेकिन अब युग के आखिर में वे एक बार प्रकट हुए हैं ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा गुनाहों की सजा को उठा लें। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद इंसाफ का होना ठहराया गया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के गुनाहों की सजा को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुए। जो लोग उनका इंतजार करते हैं, उन्हें सजा मुक्ति के बाद की आशीषों को देने के लिए वो बादलों में दिखाई देंगे।